जातो ह्यात्मा भुवार्थितः भारावतारणायान्ये भुवो नाव इवो दधौ सीदन्त्या भूरिभारेण जातो ह्यात्मा भुवार्थितः अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। कुछ कहते हैं कि जब यह संसार भार से बोझिल समुद्री नाव की भांति अत्यधिक पीड़ित हो उठा तथा आपके पुत्र ब्रह्मा ने प्रार्थना की तो आप कष्ट का शमन करने के लिए अवतरित हुए हैं। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो कल हम सुन रहे थे कि कुंती महारानी कह रही हैं कि कई लोगों का मत है कि आप देवकी और वसुदेव की याचना करने से यहां पर प्रकट हुए हैं। अपरे वसुदेवस्य देवक्याम याचितो भ्यगात, उनके ऊपर कृपा दिखाने के लिए, और सुरत विषाम जो देवताओं से या भक्तों से द्वेष करते हैं ऐसे लोगों के वध के लिए, वधाय च आप यहां पर प्रकट होते हैं। अब और एक कारण कुंती महारानी प्रस्तुत कर रही हैं जो अन्य लोग कहते हैं। भार अवतार अन्य, अन्य जो और अन्य लोग हैं वो कहते हैं कि आप ब्रह्मा जी के प्रार्थना के फलस्वरूप यहां पर प्रकट हुए हैं। पहले देवकी और वसुदेव की प्रार्थना और अब ब्रह्मा जी की प्रार्थना। भगवान केवल अपने भक्तों की बात सुनते हैं। जो भी उनके पास भक्ति भाव से जाता है और प्रार्थना करता है तो भगवान उस प्रार्थना को सुनते हैं और उस प्रार्थना को पूर्ण भी करते हैं। ब्रह्मा जी का जन्म जब हुआ कमल पुष्प के ऊपर तो उनको पता नहीं चला कि मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, मुझे क्या करना है, और अगर सृष्टि का निर्माण करना है तो कैसे करना है। कमल पुष्प की जो डंडी होती है उसके ऊपर नीचे वो चलते गए, फिर भी उनको पता नहीं चला। आखिर में उन्होंने ये दो शब्द सुने, ये एक शब्द, दो अक्षर सुने, त और प, तप, जिससे उनको पता चला कि ये एक आदेश है मेरे लिए तप करने के लिए। अपने आप को तपस्या में उन्होंने स्थित कर दिया। देवताओं के लोकों के गणना से 1000 वर्ष अपने आप को तपस्या में स्थित किया और उसके बाद भगवान की कृपा उनके ऊपर हुई। किस रूप में? उनको सारे वैकुंठ जगत का दर्शन हुआ। श्रीमद् भागवत के 2nd स्कंध में यह वर्णन आता है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि सारा वैकुंठ जगत विस्तार में ब्रह्मा ने देख लिया। हालांकि ब्रह्मा जी इस भौतिक जगत के अंदर बैठे थे। भौतिक जगत जो है ये एक अंडे के समान है, ये भौतिक ब्रह्मांड, इसलिए इसको ब्रह्म अंड कहते हैं। अंडा, अंडे के लिए आवरण होता है, तो ये ब्रह्मांड का आवरण ऐसा है कि कोई देख नहीं सकता कि इस आवरण के परे क्या है। इसे मान लीजिए कि ये कमरा बंद है, कोई खिड़कियां नहीं है, दरवाजे नहीं है, हम ऐसे ही बैठे हैं, तो बाहर क्या चल रहा है हमें पता नहीं चलेगा। तो उसी प्रकार से साधारण दृष्टि से अगर कोई व्यक्ति देखने जाए कि इस ब्रह्मांड के परे क्या है, उसको नहीं दिखाई पड़ेगा। ये ब्रह्मांड ही इतना विशाल है कि ब्रह्मांड के भीतर क्या चल रहा है ये भी हमें दिखाई नहीं पड़ता। तो ब्रह्मांड के उस पार क्या है इसकी तो बात दूर है। हाँ, ब्रह्मा जी की दृष्टि बड़ी तेज है क्योंकि वो सबसे ऊपर के लोक में निवास करते हैं, सबसे प्रमुख जीव हैं वो इस ब्रह्मांड के। हम यहां से स्थित होकर स्वर्ग लोक को या ब्रह्म लोक को नहीं देख सकते कि वहां पर क्या चल रहा है, लेकिन ब्रह्मा जी की दृष्टि ऐसी है कि सबसे ऊंचे लोक में बैठकर वो सीधे नीचे देखते हैं, उनको स्पष्ट रूप से पता चलता है कि यहां पर बेलगाम में क्या चल रहा है, कौन कौन भागवत क्लास में आए कौन नहीं आए, सब उनको पता चलता है। सीधा देखते हैं हर एक व्यक्ति को, कौन सो रहा है कौन नहीं सो रहा है, ये भी उनको दिखाई पड़ता है वहां से। इतनी तेज दृष्टि उनकी है, हम कल्पना नहीं कर सकते। और ब्रह्मा जी को ऐना के चश्मे की आवश्यकता नहीं होती है। तो ब्रह्मा जी की दृष्टि अगर तेज है तो फिर वो क्यों नहीं ब्रह्मांड के उस पार जो चीजें हैं उसको देख पाते? नहीं, क्योंकि वो आवरण ही ऐसा है, सात तरह तरह के आवरण है और एक के बाद एक आवरण पिछले आवरण से और 10 गुना ज्यादा चौड़ा है, इसलिए ब्रह्मा जी भी नहीं देख सकते हैं। ये ब्रह्मांड के भीतर अंधकार है और केवल भगवान के शारीरिक दिव्य शरीर के तेज से और जो ब्रह्म ज्योति के प्रकाश से, प्रतिबिंब से, जो सूर्य और चंद्र होते हैं इत्यादि, जो सूर्य के ये रोशनी से ये ब्रह्मांड जो है प्रकाशित होता है, अन्यथा ये ब्रह्मांड के भीतर कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन ब्रह्मा जी को अपने आसन पे, कमल आसन पे बैठकर सारे वैकुंठ का दर्शन हुआ। तो कैसे हुआ? भगवान की कृपा से। भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो हमें ऐसे दर्शन दिला सकते हैं। तो भगवान ब्रह्मा जी के तपस्या से प्रसन्न हुए और फिर ब्रह्मा जी वहां बैठे ही अपने अंतःकरण में सब कुछ देख रहे थे कि अनंत कोटि वैकुंठ लोक हैं भगवान के धाम में और सब स्वयं प्रकाशमान हैं। भौतिक जगत के भीतर सब अंधकारमय है लेकिन वैकुंठ जगत प्रकाशमान है, ज्योतिमय है। तमसोमा ज्योतिर्गमय, ये अंधकार भरा जगत, इससे जाकर हमें उस ज्योति भरे जगत में हमें जाना है। तो वहां पर बहुत सारे लोक हैं, वैकुंठ लोक, और ये लोक खाली नहीं है, उसमें तरह तरह के सुंदर प्रकाशमान व्यक्ति हैं, पुरुष हैं और स्त्री हैं। लेकिन वहां पर पुरुष स्त्री का संबंध ऐसा नहीं है जैसा कि यहां पर इस भौतिक जगत में है, वहां दोनों का संबंध बिल्कुल शुद्ध है, आध्यात्मिक है, भगवान श्री कृष्ण के भक्ति के ऊपर केंद्रित है। वहां कोई भौतिक भावना, कोई काम वासना नहीं है, कोई मोह नहीं है। इसलिए श्रीमद् भागवत में पहले ही श्लोक बताया गया है, सद्यो हृदि अवरुद्यते तकृति शुश्रूषुभि तत्क्षणात्, कि जो व्यक्ति भक्ति करता है तुरंत उसके हृदय में भक्ति भावना जागृत हो जाती है और वो अनुभव कर सकता है। क्या अनुभव कर सकता है? ये अनुभव कर सकता है कि निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमही, भगवान का धाम जो है हमेशा उस मोह से रहित है, मोह नहीं है वहां पर। जब मोह नहीं है तो शारीरिक भावना नहीं है, तो उन्होंने देखा कि सुंदर महिलाएं हैं और सुंदर पुरुष हैं। जो पुरुष हैं उनका रंग है आसमान के नीले रंग, उस रंग उसकी कांति है उनकी, और जो महिलाएं हैं उनकी कांति है जैसे बिजली के समान। और इस प्रकार से ऐसे लग रहा है कि बादलों में बिजली चमक रही है जब ये इधर उधर अपने जहाजों में उड़ रहे हैं। ब्रह्मा जी ने देखा कि वहां वैकुंठ जगत में भी जहाजे हैं और वो सब उड़ रहे हैं आसमान में, लेकिन उन जहाजों में कोई पेट्रोल डीजल की आवश्यकता नहीं, अपने ही शक्ति पे, इच्छा पे चल रहे हैं वो। जो वहां पर बैठते हैं उन जहाजों में, लोग अपनी इच्छा के अनुसार यहां से वहां जाते हैं। यहां ऐसे कोई जहाज नहीं है कि हम गाड़ी में बैठे, इच्छा किया कि गाड़ी चलो बिना पेट्रोल के, बिना कोई चाबी के, और गाड़ी चल पड़ी, ऐसा नहीं होता है। लेकिन वैकुंठ जगत चिंतामणि धाम है, इच्छा करने मात्र से ही ये सुंदर सुंदर जहाज यहां वहां उनको ले जा रहे हैं। और फिर उन्होंने देखा कि स्वयं भगवान बैठे हैं और आराम से शयन करते हुए हैं, और उनका एक उनके चरण कमल एक के ऊपर एक है और अपने भक्तों की ओर चरण कमल बढ़ा रहे हैं, और भक्त जो है चरण कमल की ओर प्रार्थना करके सुंदर उनके चरण कमलों का दर्शन कर रहे हैं, और भगवान के चेहरे पर हल्की मुस्कान है। तो ये वर्णन द्वितीय स्कंध में आता है। और फिर इसको देखकर ब्रह्मा जी बहुत प्रभावित हुए, और वही भगवान जिनको उन्होंने वैकुंठ जगत में देखा था वही तुरंत ब्रह्मा जी के सामने कमलासन के सामने आके खड़े हो गए और खड़े होकर मुस्कुराए। और ब्रह्मा जी ने देखा आंख खोलकर, और फिर भगवान ने ब्रह्मा जी का हाथ हिलाया, शेक हैंड किया, ब्रह्मा जी आप कैसे हैं? ब्रह्मा जी बिल्कुल विस्मित हो गए, अचानक कोई बहुत बड़ा आदमी आकर सड़क में किसी भी हमारा हाथ हिलाए तो हमारे चेहरे पे क्या बीतेगा, अरे इतने बड़े आदमी हमारे से हाथ मिला रहे हैं। तो ब्रह्मा जी देख रहे, अरे स्वयं भगवान आए मुझसे हाथ मिलाने के लिए। और फिर भगवान ने कहा कि हे ब्रह्मा, मैं तुम्हारे तपस्या से, तुम्हारे छल रहित कपट रहित भाव से बहुत प्रसन्न हूं। विरला ही ऐसे कोई व्यक्ति होता है जिसको मैं मेरे धाम का दर्शन कराता हूं भौतिक जगत में होते हुए, लेकिन तुम्हें ये सुअवसर प्राप्त हुआ है, तुमने मेरे धाम का दर्शन किया और मेरा दर्शन भी किया। और इस प्रकार से भगवान ने ब्रह्मा जी को पूरा ज्ञान दिया, उनको श्रीमद् भागवत का उपदेश दिया। इस श्रीमद् भागवत का जिसके जो हमारे सामने है, जिनका श्रवण कीर्तन हम रोज करते हैं, इस श्रीमद् भागवत में कितने श्लोक हैं? 18,000। लेकिन ब्रह्मा जी ने जो श्रीमद् भागवत कहा ब्रह्मा जी को, उसमें कितने श्लोक? 4। इसलिए उस भागवत को चतुश्लोकी भागवत कहते हैं, 4 श्लोकों वाला भागवत। तो पूरा भागवत का ज्ञान सारांश में, सूत्र रूप में प्राय, वो इन 4 श्लोकों में है। और इन 4 श्लोकों में भगवान ने उपदेश दिया। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को बाहर से भी उपदेश दिया और अंदर से भी उपदेश दिया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवि है ब्रह्मा, मूल दार्शनिक है ब्रह्म हृदय। ब्रह्म मतलब आध्यात्मिक उपदेश, हृदय मतलब हृदय के अंदर से। तो भगवान ने अंदर से भी और बाहर से भी ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ब्रह्मा जी जो हैं वो भगवान के लिए बहुत प्रिय हैं। प्रिय नहीं होते तो ब्रह्मा जी के प्रार्थना सुनकर वो स्वयं यहां प्रकट क्यों होते? भगवान केवल भक्ति को जो कीमत देते हैं, अन्य चीजों को नहीं देते। कोई ऐसे पुकारेगा, साधारण व्यक्ति भगवान नहीं आएंगे, केवल उनका भक्त पुकारता है तब भगवान आएंगे। एक नास्तिक थे कई साल पहले, जिन्होंने एक भरी सभा को बुलाया और सभा गृह में बुकिंग करके बहुत लोगों को विज्ञापन लेके बुलाया कि मैं नास्तिक हूं, अंधश्रद्धा निर्मूलन करने का मेरा आंदोलन है और मैं ये दिखाना चाहता हूं कि भगवान नहीं है। मैं भगवान को जोर जोर से निमंत्रण करूंगा कि भगवान आओ आओ, और अब भगवान आए तो मैं मान लूंगा कि भगवान है, अगर नहीं है तो आप सबको भी मानना पड़ेगा कि भगवान नहीं है। लेकिन ये व्यक्ति इतना मूर्ख था कि उसने ये नहीं सोचा कि भगवान उसकी आवाज क्यों सुनेंगे, उसकी पुकार सुनने के लिए क्यों आएंगे भगवान, जब भगवान को क्या काम नहीं है बहुत उनके धाम में कि वो ऐसे लोगों की पुकार सुनकर आएंगे यहां पर। नहीं, भगवान केवल भक्तों के भक्ति से भरे हुए पुकार को सुनते हैं। तो यहां कुंती महारानी कह रही हैं कि ब्रह्मा जी की प्रार्थना को सुनकर भगवान आए हैं, इसका मतलब है कि ब्रह्मा जी बहुत महान भक्त हैं और उनकी पुकार में बहुत तीव्र भक्ति है, इसलिए तो भगवान ने उनकी पुकार सुनी और यहां पर आए। तो यहां इस श्लोक में कुंती महारानी ब्रह्मा जी को आत्मभू कहके संबोधित करती हैं। जातः ही आत्मभू अर्थितः, आत्मभुवा, भुवा मतलब आत्मभू ने किया हुआ, अर्थितः मतलब प्रार्थना, तो आत्मभुवा अर्थितः, तो आत्मभू ब्रह्मा जी ने किए हुए प्रार्थना के अनुसार जातः भगवान का जन्म हुआ या भगवान का प्राकट्य हुआ। आत्मभू का मतलब है वो व्यक्ति जो अपने आप जन्म लिए हैं, जिनके कोई साधारण माता पिता नहीं है, या उनको स्वयं भू भी कहते हैं, भू मतलब जन्म लेना, स्वयं निजी उनका जन्म हुआ। और ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी का जन्म किसी साधारण माता या पिता से नहीं हुआ था। भगवान श्री गर्भोदक शाय विष्णु हरेक ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश करके जब गर्भोदक सागर में शयन करते हैं तो उनके नाभि से एक कमल निकलता है और उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म होता है। श्रील प्रभुपाद जी इस आत्मभू शब्द के ऊपर बहुत सुंदर टीका करते हैं, वो समझाते हैं कि यह विशेष क्यों है और भगवान को आत्मभू या स्वयंभू क्यों कहा जाता है। वैसे इस जगत में एक पति को पत्नी की आवश्यकता होती है और पत्नी को पति की आवश्यकता होती है एक संतान की उत्पत्ति के लिए, दोनों के संयोग से यह संभव है। या पति या तो पत्नी दोनों स्वतंत्र नहीं है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। इस भौतिक जगत में हरेक प्राणी हरेक व्यक्ति अन्यों के ऊपर निर्भर है, कोई पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है किसी भी कार्य करने के लिए। सांस लेने के लिए भी हम निर्भर हैं देवताओं के ऊपर, हर छोटे से छोटे कार्य करने के लिए हम अन्यों के ऊपर निर्भर हैं। तो उसी प्रकार से संतान की उत्पत्ति के लिए भी कोई एक व्यक्ति अकेला नहीं कर सकता है। तो भगवान नारायण ऐसे नहीं है, वो तो स्वराट हैं, स्वतंत्र हैं। उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी उनके पास में ही थी, उनकी सेवा में मग्न थी, लेकिन भगवान नारायण को लक्ष्मी देवी की आवश्यकता नहीं पड़ी ब्रह्मा जी के जन्म कराने के लिए। हालांकि लक्ष्मी देवी तथा सेवा हमेशा सेवा में रहती हैं, लेकिन भगवान उनके ऊपर भी निर्भर नहीं है। तो इसका मतलब है कि भगवान पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, किसी के ऊपर भी निर्भर नहीं है। इसलिए भगवान की तुलना किसी देवी या देवता से या किसी साधारण जीव से नहीं करना चाहिए। यस्तु नारायणं दैवं ब्रह्मरुद्रादि दैवतः समत्वेनैव वीक्षेत स पाषंडी भवेत् ध्रुवः। जो व्यक्ति भगवान नारायण को ब्रह्म रुद्र आदि ऐसे देवताओं के समान समझता है समत्वे नैव, तो ऐसा जो है उसको पाषंडी कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को, वो नास्तिक है, वो सद्बुद्धि से युक्त नहीं है। भगवान की तुलना किसी भी और जीव से नहीं की जा सकती है। हर एक जीव निर्भर है, लेकिन केवल भगवान ही है जो पूरी तरह से स्वतंत्र है, स्वराट। इसलिए तो वो अकेले ब्रह्मा जी को उत्पन्न कर पाए, अन्यथा ये संभव नहीं है। वैसे हम तो जानते हैं कि मात्र ये जड़ पदार्थ अपने आप में कुछ नहीं कर सकते हैं। जब तक कि आत्मा का स्पर्श न हो, जड़ पदार्थ अपने आप में मृत है, चेतन नहीं है। जैसे शरीर है, तो शरीर के अंदर जब आत्मा आती है तब ये शरीर कुछ कर सकता है। उसी प्रकार से ये ब्रह्मांड जो है अपने आप में कुछ नहीं कर सकता। जब भगवान गर्भोदकशायी विष्णु के रूप में आते हैं तब ये ब्रह्मांड में सब कार्य शुरू हो जाते हैं। तो गर्भोदकशायी विष्णु के नाभि से ये कमल पुष्प आता है। ये कमल पुष्प भी जड़ पदार्थ है, तो उसको समझना चाहिए हमें कि ये जड़ पदार्थ भी भगवान श्री कृष्ण से गर्भोदकशायी विष्णु के रूप में ये उत्पन्न होता है। अर्थात ये चेतन जो आत्मा है, ये भौतिक जगत या जड़ पदार्थों का आश्रय है या आधार है या उद्गम है। ये जड़ पदार्थ भी स्वतंत्र नहीं है, ये भी आत्मा के ऊपर या चेतन शक्ति के ऊपर निर्भर है। तो खैर, ब्रह्मा जी का जन्म ऐसे हो जाता है केवल नारायण की इच्छा के द्वारा। नारायण लेटे रहते हैं आराम से और फिर ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं। दूसरे आश्चर्य की बात श्री प्रभुपाद कहते हैं कि ब्रह्मा जी, भगवान श्री हरि या नारायण, उन्होंने अपने नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म कराया। प्रभुपाद कहते हैं कि शरीर के हरेक अंग का कार्य होता है। हम आंख से देख सकते हैं, मुंह से खा सकते हैं, लेकिन आंख से खा नहीं सकते, परंतु भगवान के लिए ऐसे कोई सीमा नहीं है। अंगान यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मंती, ब्रह्मा जी कहते ब्रह्म संहिता में कि भगवान श्री कृष्ण का शरीर जो है दिव्य है, इसलिए भगवान अपने शरीर के किसी भी अंग से दूसरे अंग का कार्य संपन्न कर सकते हैं। भगवान आंखों से खा सकते हैं, कानों से देख सकते हैं, इसलिए तो वो भगवान है। हम हमारे कानों से देख नहीं सकते, तो भगवान ने अपने नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म कराया। ये सब आश्चर्य की बातें हैं, इसलिए ब्रह्मा जी को स्वयंभू या आत्मभू कहते हैं, और उनके पुत्र हैं मनु, उनको स्वयंभुव कहते हैं। मात्रा बढ़ जाती है, अ का आ हो जाता है, तो उसका मतलब है कि उनसे उत्पन्न हुए, जैसे वसुदेव से उत्पन्न हुए हैं वासुदेव या श्री कृष्ण, तो स्वयंभू या ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए स्वयंभू मनु, वो उनके पुत्र है। तो ये है तात्पर्य आत्मभू या स्वयंभू शब्द का। इसलिए ब्रह्मा जी बहुत विशेष है, उनके पिता साक्षात भगवान है। वैसे तो हम सबके पिता भगवान है, लेकिन आध्यात्मिक रूप में, इस शारीरिक रूप में तो हमारे माता पिता अलग है, लेकिन ब्रह्मा जी के लिए आत्मा की दृष्टि से, शरीर की दृष्टि से, दोनों की दृष्टि से डायरेक्ट साक्षात भगवान ही पिता है। इसका मतलब है कि ब्रह्मा जी कितने विशेष हैं, हम ये समझ सकते हैं। तो ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, भगवान ने उनकी प्रार्थना सुनी और प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी ने प्रार्थना क्यों की, क्या कारण था, क्यों बुलाना चाहते थे वो यहां इस भौतिक जगत में भगवान को, तो यहां पर इस बात की पुष्टि की गई है। भार अवतारणाय, अवतार मतलब नीचे उतरना या कम करना, अवतारणाय मतलब कम करने के लिए, क्या कम करने के लिए, भार वजन बोझ, किसका बोझ खत्म कम करने के लिए, भुवः, भुव मतलब पृथ्वी। तो पृथ्वी माता के ऊपर ये बोझ जो है ये बहुत बढ़ गया था और पृथ्वी माता की दशा ऐसे हुई जैसे कि वो नाव इव उदधौ, उदधौ मतलब सागर। जब एक नौका या नाव सागर में होता है और नौके में बहुत बोझ हो जाता है तो नौके की अवस्था क्या हो जाती है, कभी भी डूब सकता है। तो ठीक उसी प्रकार से ये पृथ्वी माता की दशा हुई थी, पृथ्वी के ऊपर इतना बोझ हो गया था, ये बोझ पृथ्वी माता के लिए असहनीय हो गया था, इसलिए इस बोझ की वजह से पृथ्वी माता ने एक गाय का रूप लिया और सारे देवताओं के साथ वो ब्रह्मा जी के पास आए, त्राही त्राही को बचाइए बचाइए, मेरे ऊपर जो बोझ है वो असहनीय हो गया है तो इसको कम कीजिए। ब्रह्मा जी जो हैं वो अपने स्तर तक प्रयत्न करते हैं, यथाशक्ति उनकी जितनी शक्ति है उतना वो कुछ कर सकते हैं। कई समस्याएं ऐसे होती हैं जो कि ब्रह्मा जी इनका समाधान भी नहीं कर सकते, तो फिर ब्रह्मा जी को भगवान के पास जाना पड़ता है। सब जगह ये लेवल होते हैं, देखिए कई बार ये समस्या यहां तक सुलझा जा सकता है तो ठीक है, जब वहां नहीं तो ऊपर जाना, वहां नहीं तो और ऊपर जाना, अंततः भगवान के पास जाना। तो ब्रह्मा जी भी जब देखते हैं कि ये भी मेरे बस के बाहर है तो फिर ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर क्षीरोदक सागर में जाते हैं, क्षीर सागर में, क्षीर सागर के तट में ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, तीव्र प्रार्थना करते हैं, ध्यान में अपने आप को स्थित करके। और ब्रह्मा जी और अन्य देवता कोई भी भगवान विष्णु को, क्षीरोदकशायी विष्णु को देख नहीं सकते हैं, दूर उस क्षीर सागर में, दूध के सागर में भगवान क्षीर उदकशायी विष्णु, क्षीर मतलब दूध, उदक मतलब जो जल है और शाही मतलब शयन कर रहे हैं। तो ये भगवान के विष्णु के रूप को क्षीरोदक शाही विष्णु कहते हैं, तो वो बहुत दूर उस क्षीर सागर में शयन कर रहे होते हैं। तो वो ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनते हैं और ब्रह्मा जी के अंदर से ही वो एक वाणी उनकी सुनाई पड़ती है ब्रह्मा जी को, औरों को सुनाई नहीं पड़ता है। और भगवान घोषणा करते हैं कि हे ब्रह्मा चिंता नहीं करो, सारे देवताओं से कहो कि शीघ्र ही मैं प्रकट हो जाऊंगा, लेकिन ये सारे जो देवतागण हैं उनको भी मेरे पहले प्रकट होना चाहिए। कोई यदुकुल में प्रकट होगा, कोई वृष्णि कुल में, कोई यहां पर शूरसेन के राज में प्रकट होगा, तो मेरे आने के लिए तैयारी करना आप सब। इस तरह से भगवान ब्रह्मा जी के माध्यम से सारे देवताओं को संदेश देते हैं और फिर पृथ्वी माता जो है वो बहुत उनको सांत्वना मिलती है और वो चली जाती है कि ठीक है मेरा बोझ अब कम हो जाएगा। इसलिए यहां पर लिखा गया है कि पृथ्वी माता बहुत ही परेशान थी, सीदंत्या भूरि भारेण, सीदंत्या मतलब बहुत दुखी, भूरि मतलब बहुत ज्यादा, भारेण मतलब बोझ। तो पृथ्वी माता के ऊपर बोझ इतना भारी हो गया था कि वो बहुत ही पीड़ित अवस्था में थी और ऐसी अवस्था में ब्रह्मा जी जो हैं वो भगवान के पास गए थे। जब पृथ्वी के ऊपर बोझ बढ़ जाता है तो इसके क्या लक्षण हैं? देखिए पृथ्वी माता के ऊपर इतना बोझ है, पहाड़ हैं, समुद्र हैं, तो ये तो भारी बोझ है। हम एक पत्थर उठाने जाते हैं तो कितना बोझ होता है, कितना कठिन होता है हमारे लिए बड़ा पत्थर उठाना, और एक पहाड़ का क्या वजन होगा सोचिए। और कभी कभी जब पानी नहीं होता है तो नीचे कुएं से पानी उठाकर लेके आना पड़ता है, एक बाल्टी में, एक बाल्टी इस हाथ में, एक बाल्टी उस हाथ में। एक या दो बाल्टी पानी उठाने में कितना कठिनाई होती है हमको, और फिर सीढ़ी ऊपर चढ़ के आना पड़ता है। तो अगर एक बाल्टी का वजन इतना है पानी का, तो सोचिए समुद्र का वजन कितना होगा, समुद्र में पानी कितना है। तो पृथ्वी के ऊपर इतने समुद्र है, इतने सारे पहाड़ हैं, तो ये सब पृथ्वी माता को बोझ नहीं देते हैं, पृथ्वी माता को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बोझ कुछ और है, बोझ जब होता है पृथ्वी माता के ऊपर, इसके लक्षण क्या होते हैं? जब बहुत ही युद्ध होने लगते हैं, सेनाओं के बीच में, देशों के बीच में, समाजों के बीच में एक दूसरे को मार रहे हैं अस्त्र शस्त्रों से, भयंकर युद्ध होते हैं, आतंकवाद होता है, उत्पात होता है, कभी कभी अकाल पड़ जाता है, बड़ी संख्या में लोग बीमार पड़ जाते हैं। अभी एड्स की बीमारी हो गई, ये बड़ी बीमारी हो गई, कॉलेरा का वो बीमारी फैल गया सब जगह, लाखों लाखों लोगों को ये बीमारी हो गई। तो हम समझ सकते हैं कि ये पृथ्वी के ऊपर ज्यादा अधिक बोझ होने के लक्षण हैं। तो ये कौन सा बोझ है जो कि पृथ्वी सहन नहीं कर सकती? जब पृथ्वी माता आसानी से समुद्रों के पहाड़ों का बोझ सहन कर सकती है, तो ऐसा कौन सा भारी बोझ है जिसकी वजह से पृथ्वी माता इतनी पीड़ित हो गई है? सीदंत्या भूरि भारेण। वैसे पृथ्वी माता अंतरिक्ष में ऐसे तैर रही हैं, बालों की कपास हवा में इधर उड़ता है हल्का। वैसे ऐसा नहीं है कि पृथ्वी का कोई वजन नहीं है, अगर पृथ्वी को यू रखा जाए तो गिर जाना चाहिए नीचे गर्भोदक सागर में, लेकिन नहीं गिरता है पृथ्वी लोक। क्यों? क्योंकि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, धारयामी अहम ओजसा, मैं गाम आविश्य च भूतानि। गाम मतलब ये लोक है, विशेष करके पृथ्वी लोक, इस पृथ्वी लोक और अन्य लोकों के भीतर मैं प्रवेश करता हूं। गाम आविश्य, मैं आविष्ट होता हूं। धारयामी और इसको धारण करता हूं। अहम ओजसा, मेरी ओजस शक्ति से, मेरी दिव्य आध्यात्मिक शक्ति से मैं सारे लोगों को ऊपर रखता हूं अपनी अपनी कक्षा में, नहीं तो वो सब गिर जाते। इसलिए हम देखते हैं कि सारे जो ग्रह हैं, लोक हैं, बराबर सीधे अपने अपने कक्षा में घूम रहे हैं, उनके बीच में कोई टक्कर नहीं होते हैं। ऐसा हम नहीं देखते कि कोई लोग नीचे गिर गया, ऐसा नहीं होता। तो ये भगवान की ओजस शक्ति से हल्के हैं, ऐसे लगता है कि प्राय उनका वजन ही नहीं है, परंतु वजन है, लेकिन ऐसे प्रतीत होता है क्योंकि भगवान स्वयं हर एक लोक में जाकर उसको धारण करते हैं। इसलिए पृथ्वी को कहते हैं धरणी, पृथ्वी को धारण करते हैं भगवान और स्वयं पृथ्वी भी सब कुछ धारण करती है। तो पृथ्वी माता के ऊपर बोझ क्या है जो असहनीय हो जाता है? पहली बात कि जब पृथ्वी के ऊपर दुष्ट लोगों का, असुर लोगों का, नास्तिक लोगों का कार्य जो है बढ़ जाता है, तो फिर पृथ्वी को बहुत दुख होता है। वैसे इस भौतिक जगत में दो प्रकार के लोग होते हैं, कौन है? सुर और असुर। सुर होते हैं भगवान के भक्त जो धर्म परायण होते हैं, भगवान के नियम, भगवान के कायदे को मानते हैं, भगवान के नियम के अनुसार चलते हैं, आपस में प्रेम से रहते हैं, भक्ति भाव से सब कार्य करते हैं। और इनके विपरीत वो हैं जो भगवान विष्णु के भक्त नहीं हैं, उनको असुर कहते हैं। और असुर लोग भगवान के वचनों को मानते नहीं हैं, कभी कभी नास्तिक भी होते हैं ये लोग। तो सुर और असुर दोनों होते हैं, अनादिकाल से ये है। ये भगवान ने सृष्टि की रचना ऐसे की है कि किसी भी युग में सत्य त्रेता द्वापर कली में ये दोनों रहेंगे, परंतु इन दोनों की संख्या में, इन दोनों के कार्यों में एक संतुलन रहता है। लेकिन जब असुरों की संख्या बढ़ जाती है, असुरों के कार्य ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो एक असंतुलित अवस्था उत्पन्न हो जाती है, जिसकी वजह से पृथ्वी के ऊपर बोझ बढ़ जाता है। और प्रमुखतः जब ये असुर राजा या नेता बन जाते हैं, हरे कृष्ण, और राजा नेता बन के उनको बहुत घमंड हो जाता है उनकी सैन्य शक्ति का, तो फिर वो एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करते हैं। हर एक राज्य, हरे कृष्ण, हर एक देश या राज्य के नेता जो हैं, अपने अपने देश के सेना के प्रति बहुत गर्व रखते हैं और सोचते हैं कि हमारे सेना के द्वारा हम अन्यों का दमन कर सकते हैं। इसलिए हर एक देश के बीच में, हर एक राज्य के बीच में स्पर्धा है, प्रतियोगिता है कि किसकी सेना ज्यादा मजबूत है, शक्तिशाली है। और हर एक भयभीत भी है, अपने घमंड में होते हुए भयभीत भी है कि कहीं ऐसे अस्त्र शस्त्र दूसरे देश को, राज्य को नहीं मिल जाए जो हमारे पास नहीं है, कहीं वो राज्य हमसे ज्यादा शक्तिशाली न हो जाए। तो हर एक राज्य भयंकर से भयंकर अस्त्र शस्त्र उत्पन्न करने में, खरीदने में सब लगे हुए हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसे दुष्ट लोग जब मिल जाते हैं तो केवल अपने ही मृत्यु को निमंत्रण दे रहे हैं, उनके लिए बड़े बड़े एटम बम राह देख रहे हैं, ऐसे प्रभुपाद कहते हैं। तो ऐसे जब भारी भारी सैन्य यहां पर भर जाते हैं सारी पृथ्वी, तो उससे ये पृथ्वी माता जो है बहुत पीड़ित हो जाती है। और प्रिय सैनिक इधर उधर घूमते हैं एक दूसरे की हत्या करते हुए, फिर आतंकवादी उनमें उत्पन्न हो जाते हैं, वो कहते हैं हम भी सैनिक हैं, हम भी स्वतंत्र सैनिक हैं। ऐसे हर एक व्यक्ति अपने अपने राज्य, अपने अपने इच्छा के अनुसार अहिंसा के कार्य को अपनाता है, क्रूरता के मार्ग को अपनाता है, तो पृथ्वी माता के ऊपर ये ज्यादा बोझ हो जाता है। साथ साथ में जैसे ही असुरी वृत्ति बढ़ती है, नास्तिकवाद बढ़ता है, भोगवाद बढ़ता है, तो लोग बहुत पाप करने लगते हैं, लोग धर्म का पालन नहीं करते हैं, झूठ बोलते हैं, छोटे छोटे चीजों के लिए भी आभारी नहीं होते हैं, बड़ी चीजों की बात तो क्या है। तो इस प्रकार से शास्त्र में भी बताया गया है, जब लोग झूठ बोलते हैं या आभारी नहीं होते हैं तो ये भी एक बोझ बन जाता है। बल्कि श्री रामचंद्र भी रामायण में कहते हैं कि जो आभारी नहीं होते हैं, जो झूठ बोलते हैं, ऐसे लोगों का वजन माता पृथ्वी सहन नहीं कर सकती। तो झूठ बोलना या किसी ने हमारे प्रति अच्छा काम किया और हम उसके प्रति आभारी नहीं हुए, तो ये पृथ्वी माता को हिमालय पर्वत से ज्यादा वजनदार लगता है। सोचिए, भले हमारा वजन 40-50 किलोग्राम का हो, लेकिन झूठ बोलने की आदत है तो हिमालय पर्वत से ज्यादा भारी हम हैं पृथ्वी माता के लिए। पृथ्वी माता के लिए नाक पे दम बन जाते हैं। तो इसलिए ये जो बोझ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो पृथ्वी माता को और कोई चारा नहीं रहता है। और क्या कर सकती है पृथ्वी माता, तो फिर वो ब्रह्मा जी के पास जाती हैं। ब्रह्मा जी के पास क्यों जाती हैं, अन्यों के पास क्यों नहीं जाती हैं? क्योंकि ब्रह्मा जी महाजन हैं, ब्रह्मा जी भगवान के भक्त हैं, ब्रह्मा जी को ये एक पद दिया हुआ है, एक दायित्व दिया हुआ है भगवान ने इस ब्रह्मांड को संभालने का। 12 महाजन हैं आप जानते हैं, उन 12 महाजनों में से ब्रह्मा जी भी एक महाजन है। और इसके अलावा ब्रह्मा जी संप्रदाय आचार्य हैं, उनसे एक संप्रदाय शुरू होता है, गुरु परंपरा शुरू होता है। ब्रह्मा जी हालांकि एक जीव है, फिर भी कोई साधारण जीव नहीं है। इसलिए पृथ्वी माता ब्रह्मा जी के पास जाती है और ब्रह्मा जी फिर सारे देवताओं को लेकर क्षीर सागर में जाते हैं। इस प्रकार से कुंती महारानी यहाँ पर एक और कारण प्रस्तुत कर रही है और वो कहती है कि ब्रह्मा जी ने जब प्रार्थना की, कहा कि पृथ्वी के ऊपर बोझ बहुत बढ़ गया है, जैसे एक नौका डामाडोल हो रहा है बीच सागर में, क्योंकि उसके ऊपर बहुत बोझ है, तो उसी प्रकार से पृथ्वी डावाडोल हो रही है, क्योंकि यहाँ पापी लोग असुरी लोग बहुत बढ़ गए हैं, इसलिए आप आइए, कृपया आइए, हम सबको बचाइए। तो फिर भगवान सुनते हैं और यहाँ पर प्रकट होते हैं। तो ये तीसरा श्लोक है जिसमें कुंती महारानी भगवान के अवतार होने के अलग अलग कारण बता रही हैं। हरे कृष्णा। तो कोई प्रश्न, टीका, टिप्पणी किसी के?
भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग के अंत में प्रकट हो गए थे, यहाँ की भूरी भार बहुत बढ़ गया था, क्या अभी भार कम है कलयुग में?
भार तो बढ़ गया है, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण ने अभी अवतार लिया है, इस कृष्ण भावना के आंदोलन के द्वारा। तो प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण भावनामृत का जो आंदोलन है, ये भी कृष्ण का अवतार है, तो हमारी संस्था भी ये कृष्ण का रूप है। और इस संस्था के द्वारा, इस आंदोलन के द्वारा पृथ्वी का बोझ कम किया जा सकता है। कैसे? क्योंकि दुष्ट प्रवृत्ति का नाश करके, दुष्टों का नाश करके नहीं, ये हमारा कार्यक्रम नहीं है, तलवार लेकर दुष्टों का नाश करो। हमारा कार्यक्रम क्या है? जो हृदय के अंदर दुष्ट बैठा है ना, उसको नाश करना है। जो हर छोटी बात पे झूठ बोलना, हर छोटी बात पे पाप करना, दूसरों के टांग खींचना, ये जो वृत्ति है, पाप करने की वृत्ति, इसको नष्ट करना, तो इसके लिए ये आंदोलन है। जनताघ विप्लवो, ये जनता के पापों का नाश करने के लिए एक विप्लव, ये एक क्रांति है। तो भगवान के अवतार ये इस्कॉन संस्था भी है, ये अन्य जो वास्तविक प्रामाणिक कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। तो इसलिए आजकल कलयुग का बोझ इस आंदोलन के द्वारा मिट जाएगा और एक कलयुग के भीतर भी एक 10,000 वर्षों का एक स्वर्ण युग उत्पन्न हो जाएगा। फिर 10,000 वर्ष के बाद फिर से कलयुग आरंभ हो जाएगा, घोर कलयुग हो जाएगा। कल हम चर्चा कर रहे थे कि माता देवकी ने जब अपने पुत्र को देखा कि इसके चतुर्भुज हैं, ये तो विष्णु है, हालांकि जानती थी कि ये विष्णु है और उसको कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई बिगाड़ नहीं सकता उसका कुछ, लेकिन फिर भी वात्सल्य की भावना थी और वो सोच रही थी कि इस बच्चे का क्या होगा, वो डर रही थी कि कंस आके कहीं उसको कुछ मार न दे। प्रभुपाद कहते हैं अपनी टीका में एक जगह बहुत सुंदर बात, ठीक उसी तरह मेरे मन में मेरे आंदोलन के प्रति चिंता है कि कहीं ऐसे असुर आके इसको खत्म न कर दें, इस आंदोलन को। हमेशा असुरों के बाहर की ओर से खतरा रहता है ना लोगों का, असुरी लोग ऐसे दिव्य आंदोलन को देखना नहीं चाहते, पसंद नहीं करते, वो चाहते हैं कि ऐसे आंदोलन को खत्म कर दिया जाए। तो प्रभुपाद कहते हैं कि मैं भी ऐसे कभी कभी डरता हूं, तो उनका डर ठीक ऐसे जैसे देवी की माता का डर। देवी की माता जानते हैं कि उनके बच्चे को कुछ नहीं हो सकता, उसी प्रकार से प्रभुपाद जानते हैं कि ये कृष्ण का आंदोलन है, इसको कुछ नहीं हो सकता, ये तो बढ़ेगा चलेगा, लेकिन स्नेह है, भक्त है, वो चाहते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक हो। जब श्रील प्रभुपाद जी ने आंदोलन शुरू किया तो उस समय ये इतने तेजी से, इतने कम समय में फैल रहा था कि कई असुरी वृत्ति के लोग जो हैं वो घबरा गए कि ये क्या हो रहा है, अरे ये तो 1 महीने में 1 साल में तो ये सारे पृथ्वी में फैल जाएंगे, फिर हमारे राज्य का क्या होगा, हमारे धर्म का क्या होगा। तो अलग अलग जो सरकार है देशों के वो से उनपे बंदी डालने लगे, बंधन डालने लगे। अगर कोई भक्त सड़क पे जाते थे नाम संकीर्तन के लिए, उनको पकड़ के जेल में डालते थे। ऑस्ट्रेलिया में, रशिया में, ऐसे प्रगतिशील देश जैसे ऑस्ट्रेलिया, वहां भी कितने भक्तों को जेल में डाला। तो एक भक्तों ने, मंदिर के प्रेसिडेंट ने, अध्यक्ष ने प्रभुपाद के लिखा कि हमारे भक्त पुस्तक वितरण करने के लिए गए, संकीर्तन करने के लिए गए, तो वहां की पुलिस ने उनको पकड़ के जेल में डाल दिया, तो क्या करना चाहिए। तो प्रभुपाद ने लिखा उनको जेल में प्रचार करने के लिए कहो, लो कोई चिंता नहीं करना, हमारे साथ कृष्ण है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। फिर प्रभुपाद ने कहा मैं आपके प्रति इतना आभारी हूं कि मेरे आदेश के अनुसार केवल आप लोग इतनी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, आप जेल जाने के लिए भी तैयार हैं मेरे लिए। तो हमें भी ऐसे चिंतित होना चाहिए इस आंदोलन के लिए, हमें भी ऐसे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। बाहर से तो खतरे हैं ही, लेकिन हमें ऐसे कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि ये आंदोलन का खतरा हो। देखिए आंदोलन तो बढ़ेगा, चाहे हम हो व्यक्तिगत रूप से या हम नहीं हो, ये आंदोलन किसी एक व्यक्ति के ऊपर निर्भर नहीं है। हाँ, एक व्यक्ति है तो भगवान, उनके ऊपर निर्भर है, लेकिन अन्य किसी व्यक्ति। परंतु अगर हम नम्र होकर एक दूसरे के साथ बड़े सहनशीलता से, समझदारी से हम आगे बढ़ेंगे, कोई द्वेष नहीं रख के हृदय में, बल्कि प्रेम की भावना से सहयोग एक दूसरे को करके हम आगे बढ़ेंगे, तो यश हम सबको मिलेगा। और अगर हमने नहीं भाग लिया इसमें किसी वजह से, या आपस में हमने ही कोई आपस में कुछ कर लिया, तो क्या होगा, हम सबका नुकसान होगा। इसलिए हम सबको चिंता होनी चाहिए, जैसे प्रभुपाद कहते हैं, तो हम सबको चिंता होनी चाहिए कि बाहर की दशा देखिए, दिन ब दिन आए दिन क्या अवस्था है इस बाहर के समाज की। तो अगर हम अपने आप के अंदर सही भावना से एकत्र होकर नहीं करेंगे तो आंदोलन कैसे चलेगा। तो इस कलयुग के आधुनिक जमाने के जो बोझ को कम करने के लिए ये आंदोलन है, इससे कलयुग का बोझ कम हो जाएगा, मिट जाएगा। यहां एक बाढ़ आएगा, कृष्ण प्रेम का बाढ़, फ्लड, प्रेम वन्य कहते हैं। चैतन्य चरितार्थ में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं प्रेम का वन्य, प्रेम का फ्लड। एक भक्त है, उनका नाम है प्रेम वन्य दास, बाढ़ के दास, लेकिन प्रेम के बाढ़ के दास।
हरे कृष्ण। ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता का दर्शन कब किया और गोलोक का दर्शन कब किया है?
ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता की रचना कब की और गोलोक का दर्शन कब किया, ये अलग अलग कल्पों की बात है। ऐसा नहीं है कि केवल ये इस कल्प में हुआ या ब्रह्मा जी के इस दिवस में हुआ। हर एक ब्रह्मा जी के दिवस में अलग अलग सृष्टि होते हैं। ब्रह्मा जी का जन्म जब होता है उस समय भी एक सृष्टि होता है। ब्रह्मा जी का ब्रह्मा जी की रात्रि जब समाप्त हो जाती है और जाग जाते हैं ब्रह्मा जी, उस समय भी एक सृष्टि होती है। तो अलग 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 सृष्टियों के समय, तो कभी ब्रह्मा जी ऐसे ब्रह्म संहिता की रचना करते हैं, कभी कभी ये कथा जो भागवत में है वो होती है। भागवत में भी ऐसे कई अलग कथाएं हैं। एक कथा में ऐसे बताया जाता है कि जैसे अब वर्णन किया, भगवान ब्रह्मा जी के सामने आए, हाथ मिलाया, और कहीं बताया गया है कि सीधे उन्होंने हृदय से ही उनको ज्ञान दिया। ऐसे अलग 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 वर्णन है और ये अलग अलग समय में अलग अलग कल्पों में हुए हैं, लेकिन काल का महत्व नहीं है, महत्व है संदेश का। यह संदेश काल के ऊपर निर्भर नहीं है। भौतिक ज्ञान जो होता है वो काल के ऊपर निर्भर होता है। आज जो सच्चा है वो कल झूठ माना जाता है। विज्ञान में देखिए क्या हो रहा है, परंतु आध्यात्मिक बातें हैं ऐसे काल के ऊपर निर्भर नहीं है। इसलिए चाहे वो 10 कल्प पहले हुए हों या कल्प पिछले सृष्टि में हुए हों या अब हुए हों, कोई फर्क नहीं पड़ते हैं। भागवत क्या है? ये चतुश्लोकी भागवत, ये 4 श्लोक हैं जो श्रीमद् भागवत के 2 स्कंद में आते हैं, और इसके बारे में चर्चा करने के लिए अब समय नहीं है, और कभी इसके बारे में चर्चा हो सकती है। लेकिन श्रीमद् भागवत जो प्रभुपाद ने जो लिखा है, इसके ऊपर टीका लिखा है, इसके सारे सबसे लंबे तात्पर्य इस चतुश्लोकी के लिए है। कभी कभी 6-7 पेज एक तात्पर्य इसके ऊपर, बहुत सुंदर है, दार्शनिक है, इसलिए कृपया आप सब इनको पढ़िएगा। माइक जरा।
ब्रह्मा जी अगर भक्ति भाव से प्रार्थना करते इसलिए भगवान आते हैं, तो कई सारे प्रमाण में ऐसा सुना है कि नास्तिक भी होते हैं, ये भी होते हैं, ज्ञानी भी होते हैं, तो उनकी प्रार्थना कैसे सुनते
हैं? नहीं, ब्रह्मा जी कभी नास्तिक नहीं होते। नास्तिक जो होते हैं वो कभी ब्रह्मा जी नहीं बन सकते। लेकिन हाँ, थोड़े बहुत ज्ञानी टाइप के हो सकते हैं, थोड़े बहुत योगी टाइप के हो सकते हैं, लेकिन नास्तिक नहीं। पुण्यवान होने के बजाय क्या, पुण्यवान नहीं हो तो कैसे वो ब्रह्मा बन सकते हैं? कौन ब्रह्मा बन सकता है जिसने कम से कम 100 जन्मों तक अपने सारे वर्णाश्रम के नियमों को परिपूर्णता से निभाया है? ऐसा व्यक्ति ब्रह्मा जी बन सकता है। कोई भी बेलगाम का निवासी भी बन सकता है। अगर उसने 100 जन्मों तक ऐसे किया, वो भी ब्रह्मा जी बन सकता है। लेकिन हमारा उद्देश्य ब्रह्मा बनना नहीं है, हमारा उद्देश्य है भगवान का दास बनना। तो जब ऐसे अन्य कोई ब्रह्मा होते हैं, उनके अंदर भी थोड़ी बहुत भक्ति होती है, ऐसा बिना भक्ति के तो कोई ब्रह्मा नहीं होता। लेकिन प्राधान्य उनका भक्ति का नहीं है, ये हो सकता है। लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी को विशेष पद भगवान ने दिया है, भगवान ने ही उनको उस पद में रखा है, इसलिए भगवान उनको जो उचित ज्ञान है वो दे देते हैं, क्योंकि भगवान की सेवा के लिए ही तो वो ज्ञान का उपयोग करना है। आपने कहा कि लोग झूठ बोलते हैं और आभारी नहीं होते, तो आभारी होने का निश्चित मतलब क्या है, कृपया विवरण करें। आभारी होने का मतलब है कि अगर हमारे प्रति किसी ने कोई अच्छा कार्य किया है, उसको सदैव याद रखना और उस व्यक्ति के प्रति ऐसे व्यवहार करना उसी हिसाब से, कभी उसके प्रति बुरा व्यवहार नहीं करना, समझना कि ये व्यक्ति ने मेरे लिए कितना कुछ किया है। लेकिन अगर कोई हमारे प्रति अच्छा करे, हमारी भलाई के लिए बहुत कुछ करे, और हम उसके ही प्रति कुछ उल्टा ही कार्य कर दें, या भूल जाएं कि उसने मेरे प्रति ऐसे किया था, उसके प्रति नुकसान करने के लिए हम बैठ जाएं, तो ये आभारी नहीं है। इसलिए जो हमारे प्रति अच्छा करता है उसको हमेशा हमें याद रखना चाहिए, और जो हम दूसरों के प्रति अच्छा करते हैं उसको सदैव सदैव में तुरंत ही भूल जाना चाहिए। जो हमारे प्रति कोई बुरा काम करते हैं उसको सदैव याद भूल जाना चाहिए। जो हमारे प्रति कोई बुरा काम करते हैं सदैव हमेशा उसको भूलना चाहिए। और हम जो दूसरों के प्रति कोई बुरा काम करते हैं तो हमेशा याद रखना चाहिए।
एक प्रश्न,
कोशिश तो करना चाहिए कम से कम। हरे कृष्ण।
ब्रह्मा जी का जन्म कब कमल पुष्प में हुआ, तब सब अंदर ही था, उनके 2 वर्ण है तब, तो इनके बारे में तब करना, उनको कैसा पता चला, कुछ बताया नहीं, मतलब कौन बताया, क्या हुआ?
देखिए ब्रह्मा जी तो कोई साधारण जीव नहीं है। ब्रह्मा जी की बात तो दूर है, हम देखते हैं कि कितने ऐसे लोग समाज में हैं जो साधु बने, उनको कोई मालूम नहीं, बचपन से ही चल पड़े भगवान का के ऊपर ध्यान करने के लिए, कहीं जाते हैं हिमालय में बैठते हैं ध्यान करते हैं, किसी ने उनको कुछ बताया नहीं। क्यों? पूर्व जन्म के संस्कार से, पूर्व जन्म के संस्कार से वृत्ति है, इसी की वो जानते हैं कि स्वाभाविक रूप से जाते हैं, परमात्मा का अंदर से उनको मार्गदर्शन होता है। आपने देखा होगा कि एक छोटा सा बच्चा है, किसी भी प्राणी का आप देखिए, कीड़ा भी हो कुछ भी हो, वो जानता है कहां जाना, क्या करना, कैसे खाना, किस चीज को खाना। उसको ये नहीं बताया जाता कि ये तुम्हारा भोजन है ये खाओ, वो खा जाता है, उसको पता चलता है मुंह खोलना है क्या करना है, अंदर से उसको मार्गदर्शन मिल जाता है। तो ब्रह्मा जी तो कोई साधारण प्राणी नहीं है, और भगवान ने ऐसे तो उनको अंदर से बुद्धि दी कि तप मतलब तप करो, तपस्या करो, भगवान के आदेश के अनुसार उन्होंने किया, फिर उनको पूरा ज्ञान बाहरी रूप से भी मिल गया। बैक पीछे
प्रभु जी, जो आभारी होने का उसी प्रश्न का और थोड़ा स्पष्टीकरण चाहिए था कि जैसे आपने बताया कि कोई हमारे प्रति अगर उपकार करता है या हमारा अच्छा करता है, तो ये अच्छा मतलब दो तरह का हो सकता है, एक तो भौतिक और आध्यात्मिक। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हम भौतिक जीवन में है तो हमारे रिश्तेदार है या कोई मित्र है परिवार, तो वो हमारे भौतिक हमेशा हमारा हित चाहते हैं, तो वो भौतिक चीजों के लिए हमें मतलब हमेशा प्रोत्साहन देते और बोलते हैं कि आप जो मतलब अपने प्रेम के कारण ही वो बोलते हैं कि आप जो कर रहे हो वो गलत है, आपका पूरा मतलब जो जीवन है इससे उध्वस्त हो रहा है। जो भी ब्रह्मचारी बनते हैं या कोई भक्ति मार्ग में आता है, तो जैसे कॉलेज में ये करना है, मतलब भौतिक चीजों के लिए वो बोलते कि आप यहाँ जाएंगे तो आपका नुकसान होगा, तो फिर हम उनसे इनडायरेक्टली द्वेष करने लगते हैं। मतलब कैसे वो कैसे व्यवहार रखना चाहिए भक्त को?
आभारी मतलब दोनों भौतिक और आध्यात्मिक। अभी भक्त को भी चाहिए कि वो भी आभारी होए उन सब लोगों के प्रति जिन्होंने उसको मदद की है। चाहे कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी भी हुआ हो, सन्यासी हुआ हो, उसने अपने परिवार से संबंध काट भी दिया हो, फिर भी अपने मन में हालांकि वो विरक्त है फिर भी आभारी होना चाहिए कि मेरे माता पिता ने मुझे जन्म दिया और उन्होंने मुझे बड़ा किया, पाला पोसा, खिलाया पिलाया, और उसकी वजह से मैं आज इस अवस्था में हूं कि संसार को त्याग पाया और मैं भगवान की भक्ति कर पाया। भले उन्होंने बंधन डाला हो बीच में, क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं है वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने इतना तो मेरे लिए किया है तो आभार होना है, लेकिन वो आभार अपनी जगह में। और उनके प्रति हम आभारी हैं इसके लिए हम कृष्ण को त्यागेंगे वो आभार नहीं है। अपने मन में उनके प्रति आभारी रहना कि इनकी वजह से मैं आज इस अवस्था में पहुंचा, उन्होंने मेरे शरीर को तो कम से कम देखभाल किया, मुझे पढ़ाया लिखाया, इस योग्य बनाया कि मैं कुछ कर सकूं इस जगत के अंदर। लेकिन जब ये आभारी होना कृष्ण भक्ति से टकराता है तब ये अलग बात है। अगर हमारे कोई रिश्तेदार हमको कहें अरे ये मंदिर में क्यों जाते हो, ये भक्ति क्या है, चलो चलो हमारे साथ सिनेमा में चलो, हमारे साथ ये करो वो करो, या हमारे मित्र हमको कहते हैं ये सब क्या है, चलो कुछ और कार्य करने जाते हैं जो पाप है वास्तव में अच्छा नहीं है। कोई अगर दूसरे व्यक्ति को कहता है अच्छा तुम शराब पीना चाहते हो, ये लो मैं तुमको 100 रुपए देता हूं जाओ शराब पियो, तो अगर वो व्यक्ति बोला हाँ मैं बहुत आभारी हूं उसके प्रति कि उसने मुझे 100 रुपए दिए शराब पीने के लिए, तो ये आभारी होना नहीं। जैसे अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है और हम खड़े हैं या निकलने का प्रयास कर रहे हैं पानी से, डूबने से अपने आप को बचा रहे हैं, वो कहे आओ आओ मेरे साथ डूबो डूबो चलो चलो, और हम बोले नहीं कितना आभारी हूं इसके प्रति कि ये मुझे डूबने के लिए मदद कर रहा है, तो ऐसा नहीं, जो हमें गलत मार्ग में ले जाने के लिए मदद करेंगे उसके प्रति हमें आभारी नहीं होना है। लेकिन ऐसी अगर कोई हमको मदद करे भौतिक स्तर के ऊपर भी, लेकिन उस मदद की वजह से हम भक्ति में कुछ कर पाए हैं, तो उसके प्रति हमें आभारी होना चाहिए। छोटी छोटी चीजों के प्रति भी, हम कोई रेलगाड़ी में जा रहे हैं, कोई व्यक्ति उठे, बैठिए बैठिए आप बैठिए, आप सीट के ऊपर बैठिए, छोटी चीजें हैं जो सज्जन होते हैं, छोटी चीज के बारे में भी बड़े चीज के बारे में भी आभारी होते हैं। तो आध्यात्मिक विषयों की बात तो दूर रही, साधारण भौतिक चीज देने की वजह से हम आभारी अगर होंगे किसी व्यक्ति के प्रति, तो जो हमको भक्ति में प्रगति कराने में मदद करते हैं उनके प्रति हमें कितना आभार व्यक्त करना चाहिए। कहावत है अंग्रेजी में कि एक बच्चे को बड़े करने के लिए सारे गांव की भूमिका इसमें है। ऐसे नहीं कि केवल माता पिता उसको बड़े करते हैं, क्योंकि बच्चे के ऊपर प्रभाव कई पड़ जाते हैं, केवल घर का प्रभाव नहीं पड़ता। वो बाहर जाएगा, उसके मित्र आएंगे, और बाहर का समाज है, फिर उसका स्कूल है, उसके वातावरण है, तो बहुत सारे लोगों का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। तो अगर किसी बच्चे को अच्छा सज्जन या नागरिक बनाना है तो सारे गांव की भूमिका इसमें, सबकी जिम्मेदारी है। तो उसी प्रकार से हमें अगर अच्छा भक्त होना है तो केवल एक या दो भक्तों की बात नहीं है, सारे भक्तों की बात है, भक्त समाज की बात है। हम सारे भक्त समाज के ऊपर निर्भर हैं, तो हमें सारे भक्तों के प्रति हमें आभारी होना चाहिए। हाँ, कई ऐसे भक्त हैं जिनके प्रति हम ज्यादा आभारी हो सकते हैं, उन्होंने हमें ज्यादा मदद किया होगा भक्ति में, तो उनके प्रति ज्यादा आभारी है, ये स्वाभाविक है। परंतु अन्यों की भी, अन्यों का भी जो योगदान है इसमें, वो भी कम नहीं है। इसलिए हम सारे भक्तों के प्रति हमें ये भावना रखनी चाहिए कि देखिए, अगर हम केवल एक या दो लोग यहां पे होते तो क्या कथा होती, क्या कीर्तन होता, क्या मंदिर होता। लेकिन हम सब बड़ी संख्या में आए हैं, तो ऐसे संख्या में एक शक्ति है जिसको हमें, जिससे कि हमें और प्रेरणा मिलती है माया शक्ति से बचने के लिए। क्या है वो श्लोक, कलो संघे, ऐसे कुछ कहावत है कि कलयुग में शक्ति में ही संघ है। आध्यात्मिक जीवन पूर्व युगों में अकेलेपन में किया जा सकता था, लेकिन आजकल नहीं किया जा सकता, कलयुग में यह संभव नहीं है। माया इतनी शक्तिशाली है कि कलयुग में अगर हमें अन्य भक्तों का सहारा नहीं मिला तो हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। प्रभुपाद ने कहा, मैंने इस कौन संस्था केवल एक उद्देश्य से बनाया है, ताकि लोगों को साधु संग मिले, भक्तों का संग मिले। इसलिए हमें सारे भक्तों के प्रति आभारी होना चाहिए कि उनके होते हुए यहाँ पर एक प्रकार की शक्ति, एक प्रकार का वातावरण निर्माण होता है, एक प्रकार की प्रेरणा मिलती है भक्ति करने के लिए। प्रकार से हमें आभारी होना है, भले किसी भक्त के साथ हमारा झगड़ा भी हो जाए क्यों ना, फिर भी उसके प्रति मन में तो आभारी होना चाहिए। जब आभारी होंगे तो झगड़ा भूल जाएंगे। जो हमारे निम्न श्रेणी के जो गुण है, तमोगुण रजोगुण से ही झगड़े उत्पन्न होते हैं ना, तो अगर इनको मिटाना है तो हमको ऊपर के स्तर में आना है, सत्वगुण में। जो भी समस्या है वो समस्या उत्पन्न क्यों होती है, एक अमुक प्रकार की विचारधारा से, जो विचारधारा तमोगुण या रजोगुण से संबंधित है, तो उसी समस्या का समाधान अगर हमें करना है उसके पीछे भी एक विचारधारा चाहिए, और वो विचारधारा ऊपर की श्रेणी से आना चाहिए। अगर उसी श्रेणी से आया तो कोई समस्या का समाधान नहीं होगा, तो सतगुण से आना चाहिए। तो ऐसे गुण सतगुण से संबंधित हैं, जैसे आभारी होना। रजोगुण में तमोगुण में आभारी कोई नहीं है ना, लेकिन सतगुण में आभारी लोग होते हैं। तो अगर हम आभारी रहते हैं कि ठीक है मेरे साथ मेरे इस भक्त के साथ कोई मतभेद हुआ है, कोई थोड़ा बहुत द्वेष निर्माण हो गया है, लेकिन एक समय तो था जब हम अच्छे भक्त थे, मित्र थे, और एक दूसरे की हमने बहुत मदद की, उसने भी मेरी बहुत मदद की भक्ति में, साथ में हमने कीर्तन किया, साथ में हमने जप किया, तो वो जो हम याद करेंगे तो उसके बाद में जो थोड़ा बहुत द्वेष भी हुआ होगा उसको भूल जाएंगे। जो हमने पाया उस भक्त से, दिया भी होगा लेकिन पाया भी, जो उस भक्त से हमने पाया वो इतना ज्यादा है इस द्वेष की तुलना से कि इसकी कोई तुलना ही नहीं कर सकते हम। इसलिए द्वेष को भूलकर हमें उस चीज को याद करना चाहिए, फिर सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ये कलयुग में सबसे बड़ी समस्या ये है, लोगों के बीच में संबंध सबसे बड़ी समस्या, इसलिए इसको कलयुग कहते हैं, कलह का युग, झगड़े का युग, हर छोटी चीज पे झगड़ा, सबके बीच में झगड़ा, सब जगह झगड़े का वातावरण। कितने जल्दी द्वेष निर्माण होता है, कितने जल्दी श्रद्धा लोगों में टूट जाती है, श्रद्धा बढ़ाने के लिए कितना समय लगता है लेकिन श्रद्धा तोड़ने के लिए एक क्षण भी नहीं लगता। इसलिए हमें समझ लेना चाहिए कि हमारा शत्रु है ये कलह की वृत्ति, ये शत्रु है हमारा, हम सबका शत्रु है। इसलिए हमें बहुत सावधान रहना है, बहुत होशियार रहना है। तो ऐसे कई गुण हैं जिनका अनुशीलन करने से इस द्वेष को हमारे बीच में आने से हम रोक पाएंगे। जैसे आभारी होना, ये एक गुण है, सहनशील होना, करुणामयी होना, ये और गुण है। ऐसे गुणों का अनुशीलन करने का प्रयास करने से हम कली के प्रभाव को दूर रख पाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 16 माला फेरने चाहिए, कम से कम 16 माला फेरने चाहिए, ज्यादा हो सके तो ज्यादा।
खास महत्व नहीं है,
खास तो है इस दृष्टि से कि प्रभुपाद ने जब अमेरिका में जाकर देखा कि लोग ऐसे, उन्होंने कहा आपको 64 माला कम से कम दिन में करने चाहिए, तो लोग हैरान हो गए, ये कैसे हो सकता है, संभव नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है कम से कम 32 करना, 32 कहने पर भी लोग हताश हो गए। फिर प्रभुपाद ने कहा ठीक है कम से कम 16, लेकिन 16 से कम नहीं, इसलिए 16 आ गया। क्योंकि आजकल हम और करने में समर्थ नहीं है, कर सकते हैं परंतु कठिन है, जीवन का संघर्ष देखिए, घर को संभालना, ये संभालना, वो संभालना, बहुत कुछ परेशानियां हैं आजकल। हो सके कोई ज्यादा कर सकता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन आजकल के हिसाब से कुछ